जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 हरि नाम संकीर्तन की जाय श्री श्री कृष्ण बलराम की जाय श्री श्री राधे श्याम सुंदर की जाय श्री श्री गौर निताय की जाय श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्री सिंहदेव की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदान्तिकां। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने चर्चा किया था कि किस तरह से असुरों के प्रभाव से दुखी होकर के पृथ्वी ने भगवान से अवतार लेने के लिए या ब्रह्मा जी से सहायता मांगने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने सोचा कि मैं गाय का रूप लेकर के जाऊंगी। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने सारे अपने कार्य साइड में रख करके उनकी बात को ध्यान से सुना और तुरंत उनकी सहायता करने के लिए राजी हो गए। शिव जी इंद्रदेव आदि देवताओं को लेकर के पृथ्वी को अपने साथ लेकर के ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की जो क्षुरदक्षाय विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है क्षीर सागर पर उनकी स्तुति करने गए, उनको आवाहन करने गए, उनसे प्रार्थना की सुरक्षा के लिए। और भगवान ने उनको कहा कि मैं पहले से ही तुम्हारी ये बात को जानता हूँ और मैं तो जल्दी से तुम्हारी सहायता करने प्रकट होने वाला हूँ। साथ साथ में मेरा ये आदेश है कि सभी देवताओं को आदेश दिया जाए कि वो यदुकुल में और अलग अलग स्थानों में जहाँ पर मैं लीला करने वाला हूँ वहाँ पर जन्म ले, अभी अभी से ही शुरू हो जाए जन्म लेना उनका। और योग माया को आदेश दिया कि उनको भी प्रकट होना पड़ेगा मेरी सहायता के लिए। और ब्रह्मा जी ने ये सारी बात सुनाई देवताओं को और तत्पश्चात हमने चर्चा की थी कि वसुदेव की जब विवाह हुआ था वसुदेव का देवकी के साथ तो कंस उनको लेकर के बहन को ससुराल छोड़ने के लिए स्वयं रथ को चलाने का उन्होंने निर्णय किया। बहन के प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित करने का ये मौका था और वो दुष्ट बुद्धि का अवश्य था लेकिन एक भाई का जो कर्तव्य वो पालन कर रहा था, वो प्रणाली भी है परंपरा भी है। लेकिन जैसे ही देवताओं ने देखा कि ये तो देवकी का ड्राइवर का काम कर रहा है तो देवकी की सेवा कर रहा है तो भगवान अगर देखेंगे कि मेरी माता की सेवा करेगा तो इसको मैं वध कैसे करूंगा, तो इसलिए शायद कृपा कर दे उस पर। तो देवताओं ने आकाशवाणी की कि बोले तू जिसकी सेवा कर रहा है वही इसका आठवां बच्चा तेरा वध करेगा। तो जब ये देखा तो उन्होंने कंस ने क्या किया, जिस घोड़ी की लगाम उसने लेफ्ट हैंड से पकड़ के रखी थी उसी लगाम को लेफ्ट हैंड को छोड़ करके उसी लगाम को छोड़ करके उसने देवकी के बाल पकड़ लिए और जिस हाथ से उसने चाबुक पकड़ के रखा था फिर उसी हाथ से उसने तलवार हाथ धारण कर ली और मारने ही वाला था। वसुदेव सोचने लगे कि कितना दुष्ट व्यक्ति है ये, थोड़ी देर पहले तो बड़ा प्यार दिखा रहा था अपनी बहन के प्रति और अचानक से मारने को तैयार हो गया। तो वसुदेव ने सोचा कि ये क्या ठीक समय है उसके शक्ति उसके साथ लड़ना। और ऐसे भी कंस इतना शक्तिशाली था कि वसुदेव के हाथों पराजित होने वाला नहीं था। और ऐसे भी भगवान ने तो ये आकाशवाणी हो ही गई है कि आठवां बच्चा उसका वध करने वाला है, तो मैं भला क्यों वध करूं इसका। लेकिन देवकी का रक्षा करना ये तो मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने बहुत विनय किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, कंस तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये क्या शोभा देता है, अपनी ही बहन का वध करोगे तुम उसके ही शादी वाले दिन में, जिस दिन उसकी शादी हुई है, इस दिन तो तुम्हें उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। और कई ऐसे कारण है कि स्त्री है, अबला है, उसका उसके हाथ में ना कोई हथियार है, और आज उसके विवाह का दिन है, तुम्हारी बहन है, छोटी बहन है, बहुत सारे कारण बताए। तो और साथ साथ में फिर बताया कि मृत्यु से इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, कौन भयभीत होता है मृत्यु से इतना, शरीर तो ऐसे भी नष्ट होने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताए थे अलग अलग, तो शरीर तो जैसे कोई वस्त्र पुराने बदल के रख देता है, नए से धारण करता है, उस तरह से मनुष्य निरंतर शरीर बदलता रहता है। कर्मणा देव नेत्रणा जंतु रूप बदले, भगवद्गीता भगवान कहते कर्मणा देव नेत्रणा, जो कर्मणा हमारे कर्मों के माध्यम से हम हमारा नया शरीर बनाते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे आपका शरीर कंस्ट्रक्ट होता जाता है कि कौन सा शरीर, कभी कुत्ते का शरीर दिखाता है आपके फ्यूचर का, यू नो डेस्टिन टू गेट दिस बॉडी, कुछ अच्छे कर्म किए तो फिर मनुष्य का, फिर कोई काला, कोई गोरा, कोई कम बुद्धिशाली, कोई ज्यादा बुद्धिशाली, कोई धनवान, कोई गरीब, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई रोगी, कोई संदुरस्त, ये मनुष्य में कभी कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई चूहा, तो ऐसे 84 लाख योनियों में अलग अलग प्रकार के शरीर में से हमारा शरीर हमारे कर्मों के आधार से तय होता है। और हमारे कर्म हमारे जीवन के दौरान जो हम कर्म करते हैं वो मृत्यु के समय हमें स्मरण आते हैं। इसलिए कहा गया है कि मन को निरंतर भगवान के चरणों में स्थिर रखना चाहिए, उद्देश्य चाहिए है। हो सकता है कि हम आज की अवस्था में मन को निरंतर भगवान के चरणों में स्थिर रखने के लिए समर्थ ना हो, लेकिन उद्देश्य ये है कि करना ये है। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि अभ्यास एक ऐसी वस्तु होती है जो आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अभ्यास के द्वारा या प्रैक्टिस के द्वारा, ऐसा कहावत भी है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास करने वाला व्यक्ति दक्ष बन जाता है। तो इस तरह से हर एक चीज में जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आप कुशल बनते जाते हो, उस तरह से भगवान में मन को शुरुआत करो 5 मिनट 10 मिनट निरंतर उनके विषय में, जब आप प्रयास करते हो आप प्रैक्टिस करने का अभ्यास करने का, तो धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि आप परफेक्ट बन जाते हो, कुशल बन जाते हो। और इस सारी घटना में सबसे बड़ी सहायता ये होती है कि जो व्यक्ति प्रयास करता है भगवान को चिंतन करने के लिए, उसकी सहायता भगवान करते हैं। अब जब भगवान खुद सहायता करेंगे तो फिर आपकी सफलता में तो कोई विघ्न है ही नहीं। इसलिए प्रयास करना चाहिए भगवान का चिंतन करने के लिए। हम कहेंगे कि प्रभु हम कैसे चाहिए प्रयास करें, क्या करें, कलयुग में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, रोज एक माला, दो माला, चार माला, आप जितना भी कर सको, भगवत गीता को पढ़ना खोल करके, वो नहीं प्रभु बोर हो जाता मैं पढ़ने, नींद आ जाती, आप प्रयास कीजिए जितना हो सके उतना, रुचि नहीं है इसलिए नींद आती है, लेकिन प्रयास कीजिए। फिर जो लोग भगवान के शरणागत है, जो भक्त है, उनके साथ अधिक समय व्यतीत कीजिए, उनके साथ अधिक संपर्क बनाए, उनके साथ चर्चा करें भगवान के विषय में, और इस तरह से धीरे 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 मन जो है वो वश में आना शुरू हो जाएगा। मन जब भगवान के चिंतन करता करता शरीर त्याग करेगा जब अंत समय में, तो हमारी गति जो है वो शुद्ध होगी। वेल, वसुदेव ने ये सब कंस को नहीं बताया था। वसुदेव ने तो कंस को यही बताया कि शरीर त्याग करने पर दूसरा शरीर हमेशा प्राप्त होता है, इसलिए इतना सब डरना तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। और ऐसे भी ये तुम्हारी बहन जो है वो निर्दोष है, उसका कोई दोष भी नहीं है। वसुदेव सोच रहे, जैसे हमने कल बताया था, वसुदेव ने अलग अलग तरीके अपनाए। बाद में वसुदेव ने सोचा, इतना सब समझाया इसको, डिप्लोमेटिक बिहेवियर किया, लेकिन ये आदमी विचित्र है। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर दिया, उन्होंने मन में सोचा कि मेरा एक नाम है अनक दुंदुभी। अनक दुंदुभी का अर्थ होता है कि कुछ भी अशुभ मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। तो मैं, हो सकता है कि एक प्लान काम नहीं करेगा तो मैं दूसरा प्लान ट्राई करता हूं। तो वो सोचने लगे, ये इतना सब अच्छा उपदेश दिया वसुदेव ने, लेकिन कंस के दिमाग में कुछ नहीं समझा। इसका अर्थ ये होता है कि समझाने वाला कितना भी अच्छा हो, अगर समझने वाला जो है वो रिसेप्टिव नहीं है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कुछ भी समझा के उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही जो पार्टीज है, सीखने वाला और सिखाने वाला, ये दोनों तैयार होने चाहिए एक दूसरे के लिए, सुनने समझने के लिए। जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को भी कहा, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं समझ पाया था। तो ये स्वाभाविक है। और कंस का सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वो कैसे लोगों की संगत रखता था, मनुष्य को खा जाए ऐसे राक्षस उसके मित्र थे। अपने राक्षस, कुछ राक्षस असुर वो उसके विशेष मित्र थे, उसमें कई सारे नाम आएंगे अगले अध्याय में। और बड़ा क्रूर किस्म का आदमी था, बहुत क्रूर था वो, और पिछले जन्म में तो कालनेमी था, कालनेमी नाम का असुर था। तो ये सोच रहे थे वसुदेव कि क्या किया जाए, कोई अदर प्लान, कोई नया करना चाहिए प्लान। तो उन्होंने सोचा कि मृत्यु को कैसे भी करके टालना चाहिए, और उसके लिए अगर थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक बिहेवियर करना पड़े तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई अपराध नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए मृत्यु को रोकने के लिए, और खास करके देवकी की सुरक्षा, कंस के हाथों से उसको बचाना, इसके लिए मुझे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अब विशेष करके वसुदेव जी नया कोई प्रपोजल लाना चाहते हैं, सोच रहे कि क्या किया जाए इसको समझाने के लिए। तो भी वो मन में सोचने लगे वसुदेव, क्या करूं इसका, किस तरह से। फिर उन्होंने सोचा कि इनको कोई लोभ, कोई लाभ, जैसे हमने सुना पिछले बार सुना था कि साम दाम दन दाम, दाम का अर्थ होता है कि कुछ प्रलोभन देना ताकि इमिनेंट डेंजर से रुक जाएगा। कोई आपके सौदे की बात, आपके पते की बात, आपके लाभ की बात अगर मैं आपको बताता हूं तो तुम वो चीज को छोड़ दो, अर्थात तुम देवकी को मारना छोड़ दो, मैं तुम्हें इससे अच्छा एक अवसर देता हूं, मेरे पास और एक प्रपोजल भी है। अच्छा, तो क्या क्या प्रपोजल है? वो है, मन में सोच रहे हैं कि मैं मेरे सारे पुत्र को कंस को दे दूं तो हो सकता है कि तुरंत मैटर खत्म हो जाए। आठवां पुत्र रक्षा तुम्हारी मृत्यु करेगा ना, तो सारे पुत्र ही मैं तुम्हें देता हूं। पहले सोचा आठवां पुत्र दे दूं, बाद में सोचा कि सारे के सारे ही दे देता हूं तो संतोष हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मन में शंका है कि क्या वसुदेव जैसा, क्या उसको पिता के प्रति कोई, पिता के अपने बच्चे के प्रति कोई मोह नहीं है क्या, कोई अपने बच्चे को ऐसे मार डालेगा। तो वसुदेव ऐसे मन में सोच रहे थे कि क्या किया जाए, हो सकता है कि मैं अपने सारे बच्चे इसको दे दूं और ये जिंदा रहे और ये वो सबको मार डाले, मेरे पास तो कोई बच्चे बच्चे का नहीं बाद में। और अगर ये सारे बच्चे अगर है, अगर उसने नहीं मारे, समझो कि कंस ऐसे ही मर गया पहले मेरे बच्चों को बड़े होने से पहले, या बच्चे जन्म ले उससे पहले ऐसे ही वो मर गया, तो मेरे सारे बच्चे जीवित रह जाएंगे। लेकिन अगर कंस भी जीवित रह गया और मेरे बच्चे वो उसका भी जन्म हो गए, तो शायद मुझे एक एक करके सारे बच्चे उसको हाथ में देने पड़ेंगे। अगर मेरे बेटे सब अगर स्ट्रांग निकले, हो सकता है कि वो बड़े होकर के मेरे कंस की हत्या ही कर दे। लेकिन छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तब हत्या करेंगे, लेकिन बच्चे को ही कंस मार देगा तो बच्चे क्या कंस के साथ लड़ाई करेंगे। तो ये सब विचार उनके मन में आ रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि भगवान जो भी करेंगे ठीक करेंगे, श्रद्धा, दिस वॉज अनदर क्वालिटी वॉट ही हैड। पांच महत्वपूर्ण कारण जो हमने कल चर्चा किया था आपसे, उसमें से एक कारण ये भी था, श्रद्धा वसुदेव का। तो वसुदेव के तीव्र श्रद्धा था भगवान के आदेशों के प्रति, वचनों के प्रति। भगवान का जो भक्त होता है वो अवश्य ये चीज को ध्यान में रखता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज उनके पिताजी वो इतने दुष्ट बुद्धि के थे, हिरण्यकशिपु, कि वो राग असुर था, इंद्र चंद्र देवता भी सब लोग उससे डरते थे, लेकिन विष्णु का नाम सुनना पसंद नहीं करता था, भगवान का बड़ा विरोधी था। लेकिन प्रहलाद, उसकी गोद में उसको बिठाया और प्रहलाद बिल्कुल उसके कान के पास बैठा हुआ अपनी गोद में बच्चा, और बच्चा को पूछा, बेटा तुम क्या सीखा सबसे अच्छा? एंड वंडरफुली प्रहलाद सेड, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। एंड दिस इज सो फियरलेस, सो फियरलेस। और प्रहलाद को उठा के पटक दिया जमीन पर। ऐसे प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन प्रहलाद कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। अर्थात भक्त जो होते हैं वो भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, और खास करके जब ऐसी कष्टमय सिचुएशन हो, जब खास करके वसुदेव का जो सिचुएशन है वो बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है कि उसको अपने छह बच्चों को देने की बात है, सोच रहे कि दूं नहीं दूं, देवकी को रक्षा करूं, देवकी की रक्षा करना ये सबसे पहला करते हो, इसके लिए मुझे वचन देना पड़ेगा और तभी जाके ये ठीक होगा। तो मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है कि मैं कर्तव्य का पालन करूं। तो कर्तव्य का पालन का अर्थ ये नहीं होता है कि हमें आसक्त होकर के काम करना पड़ता है हमेशा, और अनासक्ति का अर्थ ये भी नहीं होता है कि हम लापरवाह रहे। अर्थात जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें अनासक्त होकर के कर्तव्य करना चाहिए। हाँ। So, वसुदेव ने फिर ये प्रपोजल रखा। क्या प्रपोजल रखा? वसुदेव ने उनको कहा कि मैं अपने सारे बच्चे तुम्हें अर्पण करूंगा। हाँ। तो अभी ये वसुदेव का ये पूरा अपने आप को मन को पूरा तैयार किया, कितना बड़ा डिसीजन लेना था, कितना बड़ा डिसीजन, कितना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया, और उसमें भी कंस का प्रशंसा भी किया। इसके श्लोक का उपयोग हुआ है यावद आत्मनि दर्शनम। यावद आत्मनि दर्शनम का अर्थ होता है कि इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और अपनी पूरे सामर्थ्य को प्रस्तुत करना चाहिए। तो वसुदेव जो है वो एक्सटर्नली स्माइल, बाह्य रूप से वो थोड़ा स्माइल किए लेकिन अंदर से बड़ी तीव्र दुख की उनको अनुभव हो रहा था। सो कभी कभी ऐसे डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेटिक बिहेवियर करना पड़ता है केवल सत्य की रक्षा करने के लिए। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर को कहा था कि बोलो अश्वत्थामा था, तो कोई कह सकता है नहीं ये तो गलत है, लेकिन सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए कभी कभार भक्तों को भगवान का जो मिशन है उसको फुलफिल करने के लिए एक कार्य करना पड़ता है। तो भगवान के हेतु को सिद्ध करने के लिए वसुदेव ने ये सोचा कि मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भक्त को जिम्मेदारी का भान होना चाहिए, अपने में जो जिम्मेदारी होती है वो समझना चाहिए। अनासक्ति का अर्थ होता है हमारा कर्तव्य समाप्त होने के बाद उसके फल के प्रति अनासक्ति, इसको अनासक्ति बोलते हैं। और लापरवाही बोलते हैं कर्तव्य करने से पहले उसके प्रति अनासक्ति, वो लापरवाही के कारण होता है। तो इसलिए अगर हम इसकी महत्व का समझेंगे नहीं, इसको क्यों किस तरह से मैं इसका पालन करना है या फिर कृष्ण की सेवा को प्राधान्य देना है या उसको प्राथमिकता देना है, तो वो प्रयास के प्रति अनासक्ति नहीं होती है, परिणाम के प्रति अनासक्ति होती है। सो इस तरह से अर्जुन वसुदेव ने सोचा कि आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, राइट? हाँ, देवकी से तो कोई भय नहीं है और देवकी के बेटे जो होंगे वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, देवकी तो नहीं बनेगी। अरे नहीं, यही तो आकाशवाणी थी ना। हाँ, यही आकाशवाणी। तो मैं आपको एक वचन देता हूं। क्या वचन दे रहे? मैं देवकी के जो बेटे होंगे वो सब तुम्हें ला करके दे दूंगा। तो इट वॉज अ बिग डिसीजन। देवकी के हृदय में भी वो तो ऐसे भी डरी हुई थी, वो सोचते थे उनके पति जो करेंगे वही सही है। सो ये तो बिल्कुल सौदा किया वसुदेव ने देवकी को बचाने के लिए, लेकिन ये आवश्यक था और ये डिप्लोमेटिक डिसीजन था। तो भक्तों को जैसा हमने बताया डिप्लोमेटिक, सो भक्तों का क्या विचार होता है कि खूटी नाटी जो होता है वो भक्ति के जीवन में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन कृष्णा की प्रसन्नता के लिए वसुदेव ने जो किया वो सही था। कुटी नाटी का अर्थ होता है कि निजी स्वार्थ को संतोष करने के लिए, अगर वसुदेव अपने केवल अपने स्वार्थ को संतोष करने के लिए कुछ गलत उल्टा सीधा कुछ प्रपोजल दिया होता तो अवश्य ही उनके लिए ये गलत था, लेकिन वसुदेव जैसा महात्मा जो स्वयं भगवान का पिता बनने के लिए क्वालिफाइड है वो व्यक्ति ऐसी कोई गलती नहीं करता। सो इसलिए भक्त जो होते हैं वो दैत्य के द्वारा और दानों के द्वारा, दोनों के द्वारा उनकी प्रशंसा होती है, क्योंकि भक्त जो होता है वो केवल निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, उसके हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं होती। और ये प्रपोजल जैसे कंस ने सुना, कंस कहा वचन देते हो सही, सब बच्चे अपने दे दोगे? हाँ मैं दे दूंगा सब बच्चे। ठीक है, देवकी को छोड़ दिया, उस दिन सोचा हाश इमिनेंट डेंजर तो गया, अब 8 साल में 8 बच्चे होंगे, हर साल में एक एक बच्चा वसुदेव को देना है, देव कंस को। तो पहले साल में बच्चा हुआ और वो कंस के पास लेकर के वसुदेव को जाना था। इसके विषय में हमारे आचार्यगण कहते हैं कि देवकी के विषय में श्रीमद् भागवतम कहता है कि सभी देवताओं का वो आश्रय स्थान है, क्योंकि भगवान की माता वो है, इसलिए सभी देवताओं का आश्रय स्थान है। इसलिए पहला जो बेटा देवकी का हुआ, ऐसा प्रथा है कि पहला जो बेटा होता है उसका नामकरण उसी दिन करना चाहिए। तो पहले बेटे का नामकरण भी कर दिया जन्म के साथ, उसका नाम रखा कीर्तिमान। और ये जो 6 बच्चे जिसका आप जानते हो कि एक के बाद एक कंस जिसकी हत्या करने वाला है, तो ये 6 बच्चे जो कृष्ण देवकी के जो हुए थे, वो शास्त्र के आधार से ये प्राप्त होता है कि वो मरीचि के 6 पुत्र थे। मरीचि के पुत्र, मरीचि जो मन से जन्म लेता है ब्रह्मा जी के, तो उनके 6 पुत्र थे और उनको शाप मिला था। तो ये उनका 3रा जन्म था और इसमें से उनको मुक्ति मिलने वाली, तुरंत जन्म लेके मरना है, बस गिरने का शाप मिला था उनको। सो मरीचि का पहला बच्चा जब देने आए तो स्वयं देवता ही देने आए, उनके गर्भ में अंदर रखे गए। वसुदेव ने क्या सोचा कि मैं अपना पहला बच्चा मैं देने जाऊं, ये तो कितने दुख की बात है अपने ही बच्चे को मारने के लिए, दिस इज सो डेंजरस, सो पेनफुल, एक्चुअली इट्स पेनफुल। यू आर, जैसे बच्चा जन्म लिया आप अपने मृत्यु के सामने उसको मृत्यु के लिए सौंप रहे हो, और मैं खुद जाऊंगा अपने बच्चे को लेकर के। बड़ा पेन था उनके हृदय में, लेकिन उन्होंने अपने पेन को छिपा लिया। फिर उन्होंने सोचा कि जो साधारण लोग होते हैं उनकी तुलना में जो भक्त होते हैं उसका तो अलग व्यवहार होता है। क्या व्यवहार? कि उसको कष्ट में, दुख में, सुख में समान रहना चाहिए। यहां पर श्लोक का उपयोग हुआ है अनर्थद अति विहवला, कहा गया है कि अगर कोई कैसा भी नीच से नीच व्यक्ति हो, वो भी अपने बच्चे का वध नहीं करता है, अपने बच्चे की हत्या नहीं करता है, तो क्या बच्चे को बचाना, बच्चे के प्रति स्नेह होना, ये स्वाभाविक नहीं था वसुदेव के प्रति? अगर लेकिन अगर वो बच्चा नहीं देते हो कंस को, तो वो झूठे असत्य बोलने वाले साबित होंगे, वचन पालन नहीं करने वाले। तो वसुदेव चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में कहते आगे कि पहले तो वसुदेव ने ऐसा भी एक बार सोचा था कि क्या करूं, मैं गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास ले लूं, ऐसा भी विचार एक बार आया था उनके मन में। फिर सोचा कि किसी बच्चे को जन्म नहीं देता हूं, जन्म बच्चा होगा तो ये मारेगा ना, बच्चा ही नहीं होगा तो मारेगा कैसे। तो ऐसे कई सारे विचार वसुदेव के मन में आते थे। सो वसुदेव ने सोचा कि सत्य बोलना, जब बच्चा जन्म हुआ है तो सत्य बोलना ये साधु का स्वभाव है, तो और बच्चों को, एक पिता को अपने बच्चे की मृत्यु उसके आंखों के सामने होना, ये साधु का स्वभाव नहीं है, तब क्या किया जाए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि आ, साधु जो होता है वो सहनशील भी होना चाहिए, तो क्या साधु सहनशील नहीं हो सकता है? तो मुझे सहन करना चाहिए। बाद में वसुदेव सोचने लगे कि कंस ने तो नहीं बोला था कि बच्चे लेके आओ मेरे पास और मैं एक एक करके मैं मारूंगा, ये तो मैं ही था जाकर के वो बच्चों को देने का ऑफर दिया था। सो इस तरह से वसुदेव ने एक ही श्लोक में इतने सारे विचारों को प्रस्तुत किया था। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है। फिर वसुदेव ने कहा कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो भक्ति वाला या अनासक्त तो होता है, उससे संसारी व्यक्तियों के प्रति मोह से बंध जाना ये शोभा नहीं देता। और हो सकता है कि शायद कंस को भी दया आ जाए, कंस शायद ना मारे, मैं तो ऐसे ही इतना सब सोच रहा हूं कंस के पास जाऊंगा शायद ना भी मारे, ये भी तो हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि अगर मार भी दे, और आकाशवाणी तो ऐसी हुई थी कि आठवां बच्चा कंस का वध करेगा, और आकाशवाणी तो गलत नहीं हो सकती। और वसुदेव ने सोचा कि अगर भगवान स्वयं मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले है, अगर ये बात है आगे, तो इसका सीधा तात्पर्य यह निकलता है कि मुझे अपने वचन का पालन करना चाहिए और भगवान के अतिरिक्त और जो भी मेरे पुत्र है उसको, उसके प्रति जो ममता है, जो वात्सल्य है, उसका त्याग करना पड़ेगा। केवल कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को मैं प्रेम नहीं दे सकता। ऐसे भी भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से मेरी सेवा करो। और एज ऑल्सो कहावत है अंग्रेजी में, नो पेन नो गेन। अगर आप कोई बड़ी चीज प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो वसुदेव के लिए बहुत बड़ी कीमत थी अपने 6 बच्चों को अपने ही आंखों के सामने मरते हुए देखना, और वो भी खुद से देना कि जाओ मारो ये मेरे बेटे को, लो मारो मेरे बेटे को ऐसे। तो दिस वाज अ बिग पेन। और इतना ही नहीं, आगे आप देखेंगे क्या क्या कष्ट उनको सहना पड़ा। क्यों? केवल एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। क्या? उनके हृदय में बड़ी इच्छा थी कि भगवान मेरे यहां पर जन्म ले और मैं उनका दर्शन करूं। तो फिर उन्होंने ये निर्णय किया कि अगर भगवान को दर्शन करना है तो मुझे सहन करना पड़ेगा, मुझे कष्ट झेलना पड़ेगा, मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, मुझे सब प्रकार के दुख का सामना भी करना पड़ेगा, और सब प्रकार का जो मेरा वात्सल्य है वो केवल और केवल कृष्ण के ऊपर स्थिर करना पड़ेगा। सो यह विचार करके फिर वो गए थे अपने बच्चे को लेकर के वसुदेव। और ये बात सही भी है, अगर आप भगवान को सही में प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कंफर्ट जोन में रह करके हम जो भी कुछ करते हैं उससे हम तो शायद खुश हो जाएंगे, लेकिन हम भगवान का ध्यान आकर्षित करने में इतने समर्थ नहीं हो पाएंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब भगवान देखेंगे ये व्यक्ति दिन रात एक करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, तब जाके आप शायद भगवान का ध्यान आकर्षित करेंगे। पूरा मेहनत करा है। प्रभुपाद भक्तिदानंद सरस्वती ठाकुर कहते थे, ये मत सोचिए कि आप भगवान को देखना चाहते हो, रादर आप ऐसे सेवा करो भगवान की कि भगवान आपको देखने के लिए आकर्षित हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये उदाहरण आप देख रहे हो, 70 साल की आयु में इतना मेहनत करके कितना कठिनाई, कितने कठिन परिश्रम किए। 25 साल भारत में उन्होंने बड़ी मुश्किल से बिताए, प्रचार भी उनको कोई सहायता करने वाला नहीं था, उनके पास धन नहीं था, और उन्होंने जो अनुवाद किया था भगवद गीता का वो भी चोरी हो गया बाद में। सो प्रभुपाद को बड़ा कष्ट हुआ, उनको कोई वीजा नहीं था उनके पास विदेश जाने के लिए, ना कोई स्पॉन्सरशिप था, और बड़ी मेहनत करके जब सब एक एक करके जब उनको वीजा प्राप्त हुआ, उसके बाद उनको स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुआ, उसके बाद उनको टिकट चाहिए, टिकट कोई बहुत महंगी टिकट होती, और टिकट के लिए धन तो था ही नहीं, तो कार्गो स्टीमर में एक महीना का प्रवास समुन्द्र में उन्होंने बिताया, और उसमें भी दो बार हार्ट अटैक आया, और वहां अमेरिका में जाने के बाद भी ऐसा नहीं था कि कोई उनको रिसीव करने आने वाला है, उनको खुद ही खुद से नए देश में पहली बार खुद से ढूंढ के जाना था। और इतना ही नहीं, एक साल अमेरिका में रहे डाउनटाउन में, जहां पर बोर्डी स्ट्रीट अमेरिका न्यूयॉर्क में, जहां पर सबसे स्लम एरिया जो माना जाता है, ऐसे स्थान में रहे और पियक्कड़ नशेबाज कोई कभी कभी एक बार उनका हमला भी हुआ था उनके ऊपर, तो ऐसे स्थान में रहकर के उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया। और बाद में भगवान ने इतना सब परीक्षा किया, इतना सब कष्ट झेला, तब जाकर के ये हरे कृष्ण आंदोलन का शुरुआत हुआ। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया पार्क में बैठ करके, खुले में टॉमकिन स्क्वायर पार्क, और उस कीर्तन को सुन करके लोग इकट्ठा हुए, और भगवान के नाम की शक्ति से लोग हृदय पवित्र होने लगे, और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन, ये भगवान के दिव्य नाम का ये प्रचार है, वो पूरे विश्व में फैलने लगा। सो इट्स नॉट ईजी वेन यू वॉन्ट टू प्रीच, वेन यू वॉन्ट टू सर्व कृष्ण, वेन यू वॉन्ट टू प्लीज कृष्ण, यू हैव टू गेट आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन एंड यू हैव टू डू मोर सर्विसेस देन वॉट यू कैन डू। सो लाइक दिस वसुदेव ने बड़ा मेहनत किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और तब जाकर के अपना मन को स्थिर किया। देन ही वेंट टू गए कंस के पास। जब कंस ने वसुदेव को देखा कि वो वसुदेव जो है वो सत्य, वो झूठ नहीं बोलता है, वो सत्यवादी है और उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसने भी लगा, अपने बेटे को मेरे पास लेके आया, कैसा बाप है ये, और रियली भगवान ये विष्णु के भक्त, व्हाटएवर आई मीन नाइस पीपल। सो अपना बच्चे को लेके आया और खुश भी हुआ अंदर से कि देखा वचन का पालन किया, झूठ नहीं बोला था इसने। सो बड़े हंसते हुए कंस ने बोला वसुदेव को, बेटा वसुदेव जी आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हो, मुझे तुम्हारे पहले बच्चे से कोई भय नहीं है, देवकी का आठवां जो संतान है तुम्हारा और देवकी की जो आठवां संतान है, केवल मुझे उसकी ही चिंता है, क्योंकि आकाशवाणी के आधार पर तो वो मेरा वध करने वाला है, तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, तुम इसको ले जा सकते हो। सो इस तरह से वसुदेव को जब बताया गया, लेकिन वसुदेव तो ठीक है, जैसे मन ने तो सोचा था एक बार कि देखा मैंने सोचा था ना नहीं मारेगा ये अपने बच्चे को, लेकिन बाद में फिर जाते जाते रास्ते में सोचने लगे, अरे ये इसका क्या भरोसा, ये तो कुछ भी कर सकता है, ये असुर लोग उनका कोई गारंटी नहीं होता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इंद्रियां है वो संयमित नहीं होती, और इसलिए ये लोग दृढ़ निश्चय नहीं होते, जिसकी इंद्रियों पर वश नहीं होता वो उसके पास दृढ़ निश्चय की शक्ति नहीं होती है, दे आर नॉट डिटरमिन्ड, उनके पास डिटर्मिनेशन नहीं मिलता, तो वो इसका कोई भरोसा नहीं। और ऐसे भी चाणक्य पंडित कहते हैं कि विश्वासम नैव कर्तव्यम कर स्त्रीषु राजकुलेषु च, स्त्री और राजकुलेषु, राजा के ऊपर और स्त्री के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं, वो इसका क्या भरोसा, ये कुछ भी कर सकता है। तो जब वो जा रहे थे अपने बच्चे को वापस लेकर के, तब नारद मुनि देखा ये सब क्या हो रहा है,
नारद मुनि देवता लोग भी सोचे ये सब क्या हो रहा है, ये छह बच्चों को, ये तो एक को वापिस भेज दिया, ऐसे तो होगा नहीं काम। तो कृष्ण कब जन्म लेंगे, जो कृष्ण को जन्म लेना है सातवां बच्चा बलराम जी आएगा, ऐसा भी बोला है भगवान ने। तो नारद मुनि ने सोचा कि मुझे ही जाकर कुछ करना पड़ेगा। तो सीधे पहुंच गए नारद मुनि कंस के महल में और जाकर के सीधा कंस को कहा कि आइए आइए नारद जी, स्वागत है आपका, बैठिए। तो नारद जी वहां पर जाकर के कंस को भारत का अर्थ था जो रजोगुण में स्थिर होता हो, एक अर्थ ये भी है। सो उन्होंने कहा कि अरे भाई मैं तो ऐसे ही कुछ समाचार सुनाने तुम्हारे पास आया था। अच्छा क्या समाचार है? मैं भी गुजर रहा था स्वर्ग में से कहीं, तो मुझे किसी ने बताया कि मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है तो मैं फिर पास में पहुंच गया सुनने के लिए, भाई क्या बातचीत हो रही है, चर्चा क्या हो रही है, आपस में कोई इष्टकोष्टी हो रही है, कुछ मीटिंग हो रही है, कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्या बात हो रहा है। मैं ऐसे ही वहां पर जाके देखा, सारे देवता लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे। अच्छा फिर? और मीटिंग करके उन लोगों ने कहा कि भगवान विष्णु प्रकट होने वाले हैं पृथ्वी के ऊपर और तुम्हारा वध करने का प्लान बना करके आए हैं विष्णु, और तुम्हें मारने का प्लान बनाया है, तुम्हारा वध करेंगे। हाँ वो तो मुझे पता है, आकाश में आकाशवाणी भी हुई है, लेकिन ये देवता लोग एक एक प्रपोजल, सबने अपने अलग अलग प्रपोजल दिए, लेकिन कंक्लूजन में जो आया वही बता देता हूं मैं तो आपको। क्या क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि सारे देवता एक पूरा एक षड्यंत्र बनाएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारा वध करने के लिए और विष्णु की सहायता करने के लिए सबके सब देवता यहाँ पर जदुकुल में वृष्णि में जन्म लेने वाले। तो इसलिए सावधान रहो, बस यही बताने के लिए मैं तुम्हें आया था। और सुना है कि देवकी के पहले बालक को तुमने माफ कर दिया, जाने दिया। हाँ आठवें बालक से मेरी मृत्यु का बात हुआ था, पहले बालक को भला क्यों मारूं, बहन का बेटा है क्यों मारूं। हाँ बात तो वैसे तुम्हारी सही है, क्यों बच्चे को तो ऐसे क्यों मारना चाहिए, लेकिन तुम जानते नहीं विष्णु बड़े चतुर है, बड़े चपल है। जब उन्होंने बोला है कि देवकी का आठवां गर्भ, लेकिन आठवां गर्भ की गिनती कहां से शुरू होगी वो तो बताया नहीं, रिवर्स गिनती होगी तो पहला गर्भ आठवां हो गया ना, रिवर्स गिनती करेंगे तो आठ सात छह पांच चार तीन दो और एक, तो ये पहला ही तो विष्णु हो सकता है। अगर दूसरे बालक से गिनती करे या पीछे से गिनती करे या बीच में से गिनती करे, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि देवकी का कोई भी बेटा तुम्हारा वध कर सकता है, तुम्हारा वो विष्णु बन के आ सकता है। अरे हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं, तो और गुस्से में आ गया, सोचा कि नहीं 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 थैंक यू नारद मुनि, तुम कितने अच्छे हो, तुमने मुझे चेतावनी दे दी, मुझे अच्छा सहायता किया, नहीं तो मैं तो वैसे ही छोड़ देता सब बालकों को आठवें। थैंक यू सो मच, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर कंसर्न, तुम कितना ध्यान रखते हो मेरा, थैंक यू सो मच। तो कोई लोग सोचेगा कैसा है नारद मुनि, वो उसको भरा अच्छा वसुदेव अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं और कृष्ण के भाई को, और कंस को उल्टा सीधा बता करके उसको मारने का प्रयास किया। एक्चुअली नारद मुनि का ऐसा हमें कभी उनके दोष नहीं इस तरह से ढूंढना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है। नारद मुनि जब भी ये कार्य करते हैं वो कृष्ण की सेवा में लीला में सहायता करने के लिए करते, कृष्ण को प्रकट करने के जो विधि होती, जैसे कहा जाता है कि राम एक बार वो दशरथ महाराज रामचंद्र के पिता थे, और दशरथ महाराज ने क्या किया, राम उनके यहां जन्म लेने वाले थे, लेकिन 60,000 साल तक राम भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि बिचारी तैयार ही नहीं थे। सो डिले, रामलीला में 60,000 साल का डिले हुआ था। सो ये एपिसोड याद था उनको, तो इसलिए। और नारद मुनि, जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि दैत्य और दानव के बीच में बड़ा लड़ाई हो रहा था, और उसमें दानव की साइड से बलि महाराज थे। पहले शुरू शुरू में बलि लड़ने के लिए गए थे, दानव तो अक्सर ऐसा होता था, कभी देवता जीतते थे कभी दानव जीतते थे। तो इस बार ऐसा हुआ कि भगवान खुद देवताओं को शक्ति दे दिया और सब दानवों को बड़ी पिटाई की, जोर जोर से पड़ा, इतना मारा, बहुत सैन्य नष्ट हुआ। भागने लगे दानव लोग, दैत्य लोग भागने लगे, और ये दैत्य जब भागने लगे, बलि महाराज भी भागने लगे, और ये खत्म ही करने वाले थे, तो भगवान वामन देव का जन्म कैसे होगा? भगवान प्राकट्य करने के, वामन देव का प्राकट्य करना था, बलि का उद्धार करना था। तो नारद मुनि वहां पर तुरंत जाकर इंद्र के पास जाकर कहा कि बस करो, अब कितना युद्ध करोगे? चले तो गए बेचारे, छोड़, माफ कर दो, जाने दो, अब ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है भी क्या उनके पास, कोई शक्ति वक्ति तो बची नहीं है। अब तुम इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े सम्राट हो, स्वर्ग के राजा हो, शक्तिशाली हो, उदार चरित्र हो, छोड़ दो, जाने दो। ऐसा कैसे भी करके उल्टा सीधा समझा करके दैत्य को बचा लिया। और देखते हुए बोले, थैंक यू नारद मुनि, आपने हमें बचा लिया, थैंक यू सो मच। अगर नारद मुनि मन में सोचते हैं, भाई तुम्हारा बचाने का मेरा स्वार्थ था, क्या स्वार्थ था, कि मैं चाहता था कि भगवान वामन के रूप में प्रकट हो और बलि का उद्धार करे। इसलिए कई बार नारद मुनि को लोग गालियां दे सकते हैं, लेकिन नारद मुनि का उद्देश्य केवल यही था कि वो भगवान की लीला को सहायता करने चाहते थे। तो नारद ने क्यों किया ऐसा काम, तो इसके कई सारे कारण है। वसुदेव कंस को भड़काया, क्योंकि भगवान को वो खुद अपने आंखों से जल्द प्रकट होना देखना चाहते थे। देवताओं की खुशी भी इसी में थी, वसुदेव और देवकी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान को प्रकट करने के लिए वसुदेव और देवकी की जो आतुरता है उसको बढ़ाना चाहते थे। वसुदेव और देवकी की जो भक्ति शक्ति है, उनकी सहनशीलता है, उसको खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। कंस का मृत्यु जल्दी से हो जाए, ये भी एक कारण था, क्योंकि भगवान आएंगे तो कंस मरेगा, भगवान आएगा नहीं तो कंस कैसे मरेगा। वसुदेव और देवकी का आशीर्वाद भी लेना चाहते थे, क्योंकि बाद में उन्होंने वसुदेव को, नारद मुनि को थैंक यू भी कहा था, क्योंकि कृष्णा जब वृंदावन चले गए तो अगर उन्होंने सहायता नहीं की होती तो कृष्णा नहीं आए होते। और एक कारण था कि कंस को फेवरेबल बना दिया, कंस उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। सो कंस एक रूप से देखा जाए तो नारद मुनि ने कंस की सहायता नहीं की, कंस के हृदय में भय अधिक बढ़ा दिया। यही कार्य है नारद मुनि का। तो कंस ने तो वाह वाह इतना गुस्सा हो गया, तय पकड़ लो उसको, वसुदेव और देवकी को डाल दो कैद खाने के अंदर, और पहले बच्चे को खत्म कर दो, खुद ही मार डाला बच्चे को, विष्णु हो सकता है शायद, क्या पता। और बच्चे सबको, अरे इनको वसुदेव देवकी को उधर उग्रसेन को भी पकड़ लिया, डाल दो उसको कैद खाने के अंदर, उग्रसेन को भी कैद कर, अरे भाई तुम्हारा बाप है, बाप है तो क्या हो गया, पास्ट में ऐसे बहुत सारे देखा है हमने, एक्चुअली है ऐसे, भूतकाल में ऐसे बहुत बार हुआ है कि ऐसा सुनने में आता है, इतिहास में पढ़ने में आता है कि औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को, वो तो सम्राट था जिसने ताजमहल बनाया था, इतना बड़ा राजा था, तो उसको अरेस्ट कर दिया था, उसको कैद खाने में डाल लिया था, और सैनिकों को बोल दिया था कि इसको खाना पीना भी मत देना, भूख प्यास से तड़प तड़प के मर रही है, इतना क्रूर था वो औरंगजेब। तो एक बार वो उसके बाप के पास मिलने गया था औरंगजेब, जाकर के कहा अपने बाप को, क्यों सब ठीक ठाक है, सब सही चल रहा है, खाने पीने का सब सुविधा है ना तुम्हारे पास? तो उसके बाप ने बोला, अरे निर्लज, क्रूरता की कोई हद होती है, एक तो तुम्हें खाना पीना तो बंद कर दिया और ऊपर से पूछता है कि खाना पीना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे काश मैं, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि तू मेरा बेटा के रूप में आया, और काश मेरा जन्म हुआ होता, हिंदू खानदान में जन्म हुआ होता, तो हिंदू परिवार में कम से कम वो लोग तो, तुम तो जी हिंदू लोग तो मरने के बाद भी पानी डालते हैं पितरों को, और तुम तो जीते जी पानी बंद कर दिया मेरा, काश मुझे हिंदू जन्म दिया होता, लेकिन दुर्भाग्य मेरा तेरे जैसा औलाद मुझे मिला। तो इस तरह से बाद में ऐसा उससे पूछा था कि तुम्हारा कोई इच्छा है, तो बोला था शाहजहां ने कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं ताजमहल देखता रहूं, एक छोटा सा विंडो बना के दो मुझे, मैं ताजमहल देखना चाहता हूं। और फिर तो इस तरह से ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे क्रूर लोग जन्म लिए हैं जिसने अपने पिता को या अपने बच्चे को या अपनी माता को या अपने मित्र को या सबको अपने निजी स्वार्थ के कारण असुरी भावना से खत्म कर दिया। कंस को मूर्खता से वो सोच रहा था कि वहां आकाशवाणी हुई थी आठवीं बात बच्चे की, अभी ये तो सोच रहा कि सारे ही बच्चे हो सकते हैं। तो इस तरह से कंस जो है उसने अपना शुरू किया सब प्रकार की, उसने सेना को इकट्ठा करना शुरू किया, और जो भी बड़े बड़े जो राजा वहां खास करके जरासंध और अलग अलग प्रकार के असुर और इस प्रकार से सबको इकट्ठा करना शुरू किया, और उसके डर से उसका सूरसेन का राज ले लिया, उग्रसेन का ले, तो यदु वंश के जो बड़े बड़े राजा थे उन लोग को फिर छिपना पड़ा, कहीं ना कहीं भागना पड़ा, उन सबको निर्बल कर दिया। तो कुछ लोग गए कुरुस में जाकर के छिप गए, कोई निषाड्स, कोई विदर्भ चले गए, कोई कैकेय, कोई पांचाल, कोई विदेह, कोई कौशल, इस तरह से अलग अलग स्थानों में उन लोग को भागना पड़ा, छिपना पड़ा। सो ये सब कार्य उसने किया, और कुछ बहुत सारे असुरों को भी उसने इकट्ठा किया था, भौमासुर, बकासुर, अगासुर, द्विविद, और ये सब केशी, फिर अरिष्ट, बका, पूतना, ये सब को उन्होंने उस कंस ने इकट्ठा किया था, सबके साथ मैत्री में, सब अलग अलग प्रकार के असुर थे। पूतना थी वो बच्चों को खा जाती थी और मार डालती थी, ये फिर ये केशी जो था वो घोड़े के रूप में रहता था, अगासुर था वो सांप के रूप में रहता था, फिर अरिष्ट था वो बैल के रूप में रहता था। तो इस तरह से अलग अलग असुर अलग अलग प्रकार से रहते थे, इन सबके साथ बड़े मायावी थे ये सब लोग, और सबके साथ चाणूर, मुष्टिक, फिर और कौन था, भौमासुर, फिर जरासंध, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, ये सब के साथ उसने अपना मैत्री बनाया था, और सबको त्राही त्राही मचाया सब जगह। और उसके बाद जाकर के एक्चुअली भगवान ने फिर, ये तो यहां से ये हो रहा था, और भगवान ने एक के बाद एक मरीज के पुत्र वहां पर जन्म लेने वाले थे, तो भगवान ने उस समय वैकुंठ में अपनी शक्ति है योग माया उसको बुलाया, क्योंकि भक्तों के प्रति भगवान बड़े कृपालु होते हैं। भगवान ने सोचा कि ये सातवां बालक आएगा और कुछ करेगा परेशान, इससे अच्छा है कि मैं इनके मन का टेंशन, छह के बाद अब नो मोर टेंशन, कोई समस्या नहीं। तो भगवान ने योग माया को बताया, योग माया को बुलाया अपने पास। और योग माया जो है भगवान की जो नौ प्रमुख जो शक्तियां हैं, उसमें से योग माया जो है वो पांचवी शक्ति है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान की जो नौ प्रमुख आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो है विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योग माया, प्रहवी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह। तो ये भगवान की नौ मुख्य शक्तियां हैं जो भगवान के जो दिव्य कार्य है वो संपन्न करते हैं अलग अलग रूप से। तो भगवान ने योग माया को यह आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि तुम मेरी शक्ति हो, सारे संसार में तुम्हारी पूजा होती है और सब पर आशीर्वाद देना तुम्हारा कार्य है। तुम एक काम करो, तुम जाओ ब्रज धाम में, वृंदावन में। और ऐसा स्थान है वृंदावन जहां पर पूरा गैये का चरण ग्वाले लोग रहते हैं और उनकी पत्नियां अपने सुंदर भूमि पर रहते हैं। सुंदर स्थान है वृंदावन, बड़ा सुंदर जगह है, यहाँ पर बहुत सारी गैये भी रहती है। और यहाँ तक कि वसुदेव की पत्नी, वसुदेव ने क्या किया था, अपनी पत्नियों को कंस के भय के बचा करके सीक्रेटली भेज दिया था नंद महाराज के घर पे, तो गांव में रहेंगे नंद महाराज के, वहां पर नंद उनका मित्र है, और कहा कि तुम जब तक ये सब समस्या सुलझ नहीं जाती तब तक मेरी दूसरी पत्नियां जो है तुम उनका संभाल रखो, सुरक्षित रखो, और ब्रज में भले रहे वृंदावन में। तो रोहिणी को भेज दिया था नंद महाराज के भवन में, नंद महाराज राजा थे वहां पर। तो वो भी सब लोग वहां पर गए, भगवान ने उनको कहा कि जाओ तुम नंद गोकुल जो कि आज महावन में है, अब देखा होगा वहां पर गोकुल जो यमुना के पार है वृंदावन से सामने, तो वहां पर जाओ और वहां पर देवकी के गर्भ में मेरा अंश संकर्षण, मेरा अनंत शेष जो अंश है वो गर्भ में स्थापित होने वाला है, उस बच्चे को तुम किसी को बताए बिना, किसी को बता पड़े उसके बिना से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। और देवकी जो है वो बड़ी भयभीत है अपने बच्चों के कारण, क्योंकि बच्चे को एक एक करके मार रहे हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ये जो छह बच्चे मरे थे वो मरीचि के पुत्र हैं, और एक रूप से देखा जाए तो देवकी जो है वो भक्ति की अगर अवतार माना जाए, और मरीचि है वो मन का अवतार है। मरीचि के जो बच्चे हैं वो हम वो भक्ति के मार्ग में जो अनर्थ होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि अनर्थ। और कंस जो है इस संसार का भय है। भक्तों को चाहिए कि अगर वो भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस भौतिक संसार से भयभीत होना चाहिए। किस तरह से, कि इस संसार में मुझे नहीं रहना है, मैं भगवान के चरणों में ही रहना चाहता हूं। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपसे रो रो कर ये विनती करता हूं कि कृपा करके मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, मुझे ये इस संसार रूपी भयानक सिचुएशन में मुझे बाहर निकाले। तो कंस का भय जो होगा उसके कारण अनर्थ जो है वो नष्ट हो जाएंगे, अर्थात छह बच्चे मर जाएंगे। तो कंस ने छह बच्चों को मारा था, यही भय यही हमारे अनर्थ को नष्ट करेगा। जब हम भक्ति का आचरण करते, साधन का भक्ति का आचरण करते हैं, तो साधन भक्ति के आचरण में हमारे शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे शत्रु है, हमें इससे बचना है। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सही है यहाँ पर, तो फिर हम इसके प्रति सावधान नहीं रहेंगे कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी मेरे हृदय में से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इस शत्रु को हटाना है। अगर जब तक हम इसके लिए सावधान नहीं रहेंगे तो भगवान की कृपा कैसे होगी। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें यह हमारे अनर्थ जो है शत्रु है उससे मुक्त होना चाहिए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। और इसके लिए जो सहायता करते हैं वो है बलराम जी, जो सातवें बच्चे सातवें बालक के रूप में आएंगे। और बलराम जी को कहा जाता है आध्यात्मिक गुरु, आदि गुरु। तो आदि गुरु का कार्य क्या है? गुरु आपको सहायता करते हैं, कृपा करते हैं कि आपके हृदय में जो कचरा होता है काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि जो कचरा है उसको गुरु आपको धीरे 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 करके उससे मुक्त करते हैं। कैसे? आपको गाइडेंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसका पालन करो। अगर जो भक्त चुस्त रूप से गुरु के आदेशों का पालन करता है उसके हृदय का सारा मैल दूर हो सकता है। और जैसे देवकी को आठवीं संतान के रूप में कृष्ण का पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई, उस तरह से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई, उस तरह से देव बलराम जी जो है वो साक्षात सेवा का स्वरूप है और कृष्ण साक्षात प्रेम का स्वरूप है। तो अगर हम बलराम जी या आध्यात्मिक गुरु के आदेश का चुस्त रूप से पालन करके सेवा करेंगे अधिक से अधिक भगवान की, उनके वैष्णव की गुरु परंपरा की जिस तरह से सेवा करेंगे, तो इसका परिणाम यह आएगा कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। गुरु भगवान बलराम जी के हाथ में हल होता है और गुरु जो होते हैं वो वही कार्य करते। क्या? बलराम हल से सब कचरा हटाते हैं खेती में से, और गुरु जो होते हैं वो हमारे हृदय में से सब कचरा हटाते हैं उनके आदेशों के द्वारा, आदेश के माध्यम से, आदेशों का पालन करने से। और इस तरह से भगवान ने यह आदेश दिया कि तुम जाओ और मेरे अंश को बलराम जी को उधर शिफ्ट करो रोहिणी के गर्भ में। तो यहाँ पर तीन शक्तियां आप देख सकते हो। क्या? ब्रह्मा जी जीव तत्व के रूप में भगवान को आह्वान किया, बालदेव जी जो विष्णु तत्व है जिन्होंने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया पहले, और शक्ति तत्व, विष्णु तत्व जीव तत्व और शक्ति तत्व, शक्ति तत्व की सहायता से उनको ट्रांसफर किया एक गर्भ में से दूसरे गर्भ में। ये तीन तत्वों की सहायता भगवान ने लिया तब जाके के स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होने के लिए तैयार हो। तो ये छह बच्चे को मरने के बाद देवकी को, जब देवकी ने ये बताया, भगवान ने ये योग माया को बताया, तो इस तरह से इसका इनका ट्रांसफर करो, तो देन इन दैट वे भगवान ने कृष्ण योग माया को एम्पावर किया। बाकी किसकी शक्ति है अनंत शेष को उठा करके इस साइड से उस साइड में ले जाए, जो सारे ब्रह्मांड को अपने फना पे अपने सिर पर धारण करने वाले, लेकिन भगवान ने योग माया को शक्ति दिया कि तुम लेके जाओ और हाँ तुम यशोदा की बेटी के रूप में जन्म लोगी, लेकिन तुम्हें उनका वात्सल्य नहीं मिलेगा, तुम केवल जन्म लोगी। और तुम भी क्योंकि तुम यशोदा के यहाँ जन्म लोगी इसलिए तुम यशोदा अर्थात यश की प्राप्ति करोगी और आनंद की प्राप्ति करोगी। सो लाइक दिस भगवान ने कहा देव योग माया को, और आगे भी एक आदेश दिया जिसकी हम कल चर्चा करेंगे कि भगवान ने कहा कि तुम अलग अलग रूपों में पूजी जाओगी और सब जो भौतिक इच्छा रखते हैं ये सारे तुम्हारे पास आएंगे, तुम सबको भौतिक इच्छा पूरी करने का वरदान दोगी और तुम बहुत प्रसिद्ध होगी, तुम्हारी पूजा करेंगे ये लोग। तो इस तरह से उनको ये आशीर्वाद दिया और तब जाकर के फिर बलराम जी का जन्म हुआ और फिर कृष्ण जन्म हुआ। तो कल हम बलराम जी का जन्म की चर्चा करेंगे। और कृष्ण जन्म के पहले देवताओं ने भगवान के गर्भ में स्तुति किया था उसकी चर्चा करेंगे, और फिर परसों कृष्ण जन्म नंदा महाराज के भवन में किस तरह से कृष्ण का जन्म हुआ और किस तरह से वहां पर सेलिब्रेशन हुआ उसकी चर्चा हम जन्माष्टमी के दिन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।